प्रातः क्लास चल रहा था 27/4/1966 बुधवार को छठे पेज के आदि में बात चल रही थी अभी तुम बच्चों ने इतनी जोर से ज्ञान का डंका नहीं बजाया है डंका बजाते हैं ना नगाड़े की आवाज को डंका कहा जाता है नगाड़ा शिव के मंदिर में बजाया जाता है तो इतना जोर से डंका नहीं बजाया है कि वो आएगा भक्ति मार्ग में गाते हैं डंका बजाने आयो खलत तमाशे आयो तो देखो ये खलक आती है ना ये तमाशा यही है वो भक्ति मार्ग वाले समझते थोड़े ही है ना बाकी डंका तो बजाते हैं कोई बिरले को एकदम कितनी एक खलक आती है तो उनमें कोई बिरला उनसे लिखा कर भी लेती हैं लिखा के वक्त में उनको बोलो सिर्फ लिख कर देने से क्या होगा तुमको तो याद की यात्रा में जब जाना हो तब तुम्हारी आत्मा में से ये पतित विकारों की खाद निकले तब ही तुम नई दुनिया में ऊंचे पद पाएंगे इतना तलक बैठ करके एक एक को शिक्षा देवे और वो शिक्षा को धारण करे यहाँ हमारे पास बरस बरस धारण करने के लिए कहा है तो भी हम धारण नहीं कर सकते हैं तो टाइम चाहिए नहीं तो खुशी का पारा ही नहीं चढ़ता है तो वहाँ 2-5 मिनट भी विचारों की खलक जगावे फिर भी बाबा कहते हैं आगे चल करके फिर जब ये विनाश का समय आएगा थोड़ा आजकल कहाँ न कहाँ आके एक वगैरह होते रहते हैं तो आगे चल के ये भी व्यक्ति को पाएंगे ये विनाश की द्वारा थोड़ी बढ़ती जाएगी। और पीछे फाइनल में जा करके अच्छी तरह से बजेगी। जब किसको चोट लगेगी ना, जिसके सर पर डंडा बजता है, तब पता चलता है। आजकल भी तुमको कोई न कोई बुलाते रहते हैं, बहुत सी गांव में जब कोई मरता है या ऐसा कुछ होता है तो आजकल ब्रह्मा कुमारियों को मंगाते हैं कि आकर के इनको शांति दो। आगे भक्तों को बुलाते थे कि आकर के इनको भक्ति का गीत सुनाओ और इनको शांति दो। आजकल कहते हैं ब्रह्मा कुमारियों को बुलाओ, आगे भक्तों को बुलाते थे क्योंकि वो भक्त और उनके साथ माइयां मिलकर के गाती थी तो उनके झुंड को बुलाते थे। या तो वो ग्रंथ रखते थे वहां तो आजकल कहाँ कहाँ जहाँ भी तुम्हारा आश्रम है वो बोलते हैं ब्रह्मा कुमारियों को बुलाओ। तो ऐसे ऐसे हो करके तुम्हारी वृद्धि होती जाएगी। कि ब्रह्मा कुमारियों को बुलाओ तो मन की शांति होगी क्योंकि इस सारी दुनिया में तुम्हारी जैसी शांति देने वाला तो कोई है ही नहीं। कोई मिल ही नहीं सकता क्योंकि तुम्हारे में तो कोई गीत बाजे आदि का हंगामा ही नहीं है। तो शांति माना झगड़ा या हंगामा नहीं है, तो तुम्हारे में तो है ही नहीं। भले कोई में है ऐसी तो नहीं कहेंगे कि सब में है। अरे कोई कोई में तो बहुत झगड़ा है, बात मत पूछो। जब कोई के ऊपर ग्रहाचारी बैठती है ना तो बहुत ही झगड़ी बढ़ जाती है। बृहस्पति की दशा से बदल करके कभी राहु की दशा बैठ जाती है। क्योंकि ये राहु की दशा क्या करती है, ये राहु की दशा उनको अच्छाई से भारंती कर देती है। जो सच्चा सच्चा ये सत्संग है, सत्य का संग, इस दुनिया में बस भगवान ही सत्य है। तो उसके सुनाए हुए ज्ञान के सत्संग से दूर बनाए देते हैं। वो टेटर बन जाते हैं और पीछे वो जा करके देखो कितना नुकसान करते हैं, कितना रणिया मारते हैं, ये है वो है, ये फलाने हैं, ऐसे करते हैं। तो तुम बच्चों को इसमें कभी भी अफसोस नहीं खाना चाहिए, समझना चाहिए ये कल पहले भी ऐसे ही हुआ था, भले है ना, कल पहले भी असुर पी करके ऐसी तकलीफें देते थे, ये तो कल्प पहले भी हुआ था, इसमें कोई नवाई की बात थोड़ी है, ये कोई नई बात नहीं है। इसलिए ऐसी बातें आने पर कोई अफसोस नहीं करना चाहिए, अपने मिशन में मजबूत रहना चाहिए। ऐसे ऐसे सब आके तो आते ही रहेंगे, अरे बादशाही प्राप्त करने में कुछ तो सहन करना पड़ता है ना, ऐसे तो नहीं बाबा आज तुम्हारे सर पर ताज रख देगा बिगर कोई मेहनत के, अगर ऐसे ही ताज रख देवे तो बाबा के बच्चे तो सभी एक समान है ना, फिर तो सबके ऊपर ताज रख देवे, सब जिम्मेवारी का ताज लेने वाले राजाई के ताजदारी बन जाए, परंतु नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम देखते हो बाबा आकर के समझाते हैं और समझाते रहते हैं, बहुत आते हैं, समझते हुए भी नहीं समझते हैं। ये देखो अभी देखो ये फलाना आया हुआ है राधा पंथ, ये समझते हैं कि ये बाबा है ना, इससे बेहद का वर्षा मिलने का है, इनकी मत पर हमको अच्छी तरह से चलना है। इसकी बात बताई है राधा पंथ वालों की बात बताई जो राधे को फॉलो करते हैं, राधा का अर्थ क्या है, राम माने राम, धा माने धारण करने वाली, राम को धारण करने वाली, ऐसी राधा को फॉलो करने वाला राधा पंथ, वो दुनिया में तो है हद का राधा पंथ, यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में है बेहद का राधा पंथ। जो विजयमाला में जाते हैं और लेकिन ये पीछे कहाँ न कहाँ चल सकते हैं। कहाँ चल सकते हैं? एडवांस में चल सकते हैं। बस यहाँ आएंगे, अच्छी तरह से सुनेंगे और कुछ न कुछ धारण करेंगे, नोट करेंगे, फिर वहाँ जाएंगे, फिर वही धंधा दोरी फलाना। ये तीरा मीरा, ये गिट गिट गए वहाँ, तो फिर उनके अंदर खुशी का पारा नहीं चढ़ सकता। ये खुशी का पारा तब चढ़ता है, देखो दुनिया में भी धन मिलता रहता है तो खुशी का पारा चढ़ता है। उन व्यापारियों से पूछो, जब आते हैं उनको धन मिलता है तो कितनी खुशी। तो तुमको भी ये ज्ञान धन मिलता है, जब धारण होता है तो खुशी का पारा चढ़ता है। जब योग सिखलाते हैं और पहले तो नशा चढ़ना चाहिए एकदम, कि बाबा से हम अपना वर्षा ले रहे हैं बेहद का, 27/4/66 की वाणी का 7वां पे, बाबा सिर्फ कहते हैं बच्चे मेरे को याद करो तो तुम्हारा विकर्म विनाश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं निराकारी निर्विकारी निरहंकारी ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। जैसे को याद करेंगे वैसे ही तुम्हारी आत्मा भी बनेगी, और दुनिया में जितने भी हैं वो सब देह अहंकार को धारण करने वाले हैं। देह अहंकार में आते हैं, देवान में आते हैं तो 5 विकारों का नशा चढ़ जाता है। तो उनको याद करने से तुमको कोई भी निराकारी बनने का नशा नहीं चढ़ेगा, न निर्विकारी बन पाएंगे। तो बाबा सिर्फ कहते हैं बच्चे मेरे को याद करो, जितना तुम याद करेंगे उतने विकर्म विनाश होंगे, पवित्र बन जाएंगे, और जब पवित्र बन जाएंगे तो पवित्र दुनिया का मालिक आकर के बनेंगे। इसमें कोई मेहनत तो नहीं देते हैं ना, तो भी याद तो करें ना। भक्ति मार्ग में गारंटी भी देते आए हैं, जब आप आएंगे हे भगवान तो मैं बलि चढ़ जाऊंगा, ऐसे कहा है ना। तन से बलि चढ़ जाऊंगा, धन से बलि चढ़ जाऊंगा, मन बुद्धि से बलि चढ़ जाऊंगा, ऐसे कहते हैं ना। मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। अभी वो गिरधर गोपाल तो नहीं है ना जिसने पहाड़ उठाया, भक्ति मार्ग में कहते हैं ना, पहाड़ उठाया। गिर माने पहाड़, धर माने धारण कर लिया। समझते नहीं है कौन सा पहाड़ धारण कर लिया। पहाड़ का नाम दे देते हैं, गोवर्धन पहाड़। अर्थ नहीं समझते। अरे गौ माने ये कन्याएं माताओं रूपी गौएं, इनको धारण कर लिया, समर्पित कर लिया। वो गौओं को पालने वाला है, वो कोई जानवर गौओं की बात नहीं है। ये ज्ञान का दुग्ध पिलाने वाली गौएं हैं। जानवर गौएं कोई ज्ञान का दूध थोड़े ही पिला सकते। जो कहते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल, ये गौपाल है, गौओं की पालना करता है। गौ बड़ी सीधी शादी होती है। जीवन भर एक ही खूंटे से बंधी रहती है। तो ये भारत माता है, भारत की गौएं कन्याएं माताएं, इनकी ये विशेषता है कि जीवन में जिस एक खूंटे से बांध दिया जाता है सारा जीवन बंधी रहती। तो देखो ये ह्यूमन गौपाल है, जानवर गौओं को पालने वाला नहीं है भाई। उन गौओं को ज्ञान का घास मिलता है। वो तो गीत गाते रहते हैं, घास खाएं गौएं, दूध पिए ग्वाल, माखन मसरी मदन गोपाल। अरे अर्थ भी तो समझो ना, गाते तो है ना। फिर कहाँ मेरा, फिर वही बच्चे, फिर वही बच्चियाँ, वही शादियाँ बर्बादियाँ, वही मुरादियाँ। ये आजकल कलयुग के बच्चे बिच्छू चिन्हन तो है ही, परंतु ऐसे तो नहीं कहेंगे कि सबके बच्चे ऐसे नहीं। कोई के पास बच्चे बड़े खराब होते हैं, कोई के पास बहुत अच्छे होते हैं। देखो ये मोहन अम्मा बैठी है, इनको बच्चे बड़े अच्छे हैं। और कहाँ तो देखो बच्चे कितने नालायक, बाप की कमाई हुई सारी रजाई कहाँ कहाँ उड़ाए देते हैं। बाप को बोला ये साहूकार बनते हैं, कोई कोई तो सुनते भी नहीं है। तो ये बिच्छू चिन्हन हुए ना। तो बाबा कहते हैं तुमको तो इस दुनिया से हम ले जाते हैं नई दुनिया में, इस बिच्छू चिन्हनों की दुनिया से ले जाते हैं। आएंगे ना इस नई दुनिया में। कल पहले यही नई दुनिया थी और वही दुनिया ये पुरानी दुनिया बन गई। यही नई दुनिया स्वर्ग थी, अभी ये नरक बन गई है। स्वर्ग कैसे थी, किसने स्वर्ग बनाया? जो सदा स्वयं स्थिति में रहने वाला है एक बाप, वो ही स्वर्ग बनाते हैं। फिर नरक किसने बनाया? नर मनुष्यों को कहा जाता है। का माने करना, इन मनुष्यों ने इस दुनिया को नरक बनाया है। तो ये दुनिया जो नई दुनिया स्वर्ग थी, वो पुरानी होकर के नरक बनी है। नई दुनिया में देवताएं थे, दिव्य स्वभाव वाले। तो जब दुनिया पुरानी हुई, द्वैतवादी द्वापर युग से जब पुरानी हुई, दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो कुल, तो मनुष्यों के द्वारा ये दुनिया ऐसी नरक बन गई। अब फिर ये ही दुनिया नरक से स्वर्ग बननी है, और नरक से स्वर्ग बनाने वाले का नाम ही है हेवनली गॉड फादर। स्वर्ग रचने वाला फादर। कलयुग के पीछे सतयुग वाला आएगा जरूर, तो वो खुद भी आकर कहते हैं कि अभी ये कलयुग पूरा होता है। कि कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है, नई दुनिया बनाने वाला भी आ गया। अभी संगम युग है जिसमें आया है। कलयुग का अंत और सतयुग के आदि का संगम है। तुम्हें आया हुआ हूँ, और तुमको कल पहले मुआफिक फिर से योग सिखलाता हूँ, ज्ञान की बातें सिखलाता हूँ। तो तुम मुझे याद करो तो तुम्हारा विकर्म हो जाए, विकर्म भस्म हो जाए, और षष्ठ चक्र के आदि मध्य अंत को समझ लो। तो दुनिया में गाया जाता है परंतु कोई जानते नहीं है, न रचयिता को जानते हैं, न रचना को जानते हैं। ऋषि भी मुनि भी कहते गए नेति नेत, हम इसके आदि और अंत को नहीं जानते। जब ये ऋषि मुनि भी नहीं जानते थे, तो भला और मनुष्य कैसे जानेंगे? जब आगे के ऋषि मुनि विद्वान आचार्य कोई भी थे, वो नहीं कहते हैं कि हम नहीं जानते हैं। तो फिर उनकी ये वंशावली होती आई है ना, वो कैसे जानेंगे? वैसे ही बाप कहते हैं, जब हम कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण को भी ये ज्ञान नहीं रहता है, जिनका नाम ही है नारायण, नार माने ज्ञान, अयन माने घर, जिनका सारा जीवन ज्ञान जल में ही बीतता है, ऐसा ये नारायण ही नहीं जानता है।
उम्मत आपके खिलाफ चलेगी
फिर और कोई कैसे जानेंगे। लक्ष्मी नारायण से ऐसी जर्जरी भूत अवस्था को पाते हैं, फिर से ऐसे ही होगा। तो होना सुरना लगता है ना, परंतु वो तो ड्रामा है ना, आना ही पड़ेगा। आएंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, तो ये पुरानी दुनिया नहीं रहेगी। वहाँ ये चिंता नहीं रहेगी कि ये पुरानी दुनिया भी चली जाएगी और ये नई दुनिया भी चली जाएगी। नहीं तो स्वर्ग में अगर देवताओं को ज्ञान हो कि ये नई दुनिया जाने वाली है, स्वर्ग खलास होने वाला है, तो उनको भी चिंता लग जाए। एक जन्म गया फिर लेंगे, फिर बोलेंगे अरे एक जन्म कमती हुआ बाकी इतना रहा, अरे एक जन्म कमती हुआ फिर बाकी इतना, अरे फिर हम जहन्नुम में चले जाएंगे। ऐसा अगर याद रहे तो ये तो बहुत खराब हो जाए। तो देखो नई दुनिया संगम स्वर्ग में ये ज्ञान नहीं होता है, बाकी इस समय तो ज्ञान है, क्योंकि इस समय संगम युग में भगवान है ज्ञान देने वाला। फिर भगवान भी नहीं होगा स्वर्ग में और ये ज्ञान भी नहीं होगा, क्योंकि भगवान ने आकर के सुख की दुनिया बनाई दी, तो वहाँ सुख ही सुख, क्योंकि दुख हरता और सुख करता भगवान ने ये नई दुनिया बनाई और पुरानी दुनिया खलास करवा दी। तो पीछे तो सुख ही सुख है ना, वहाँ नई दुनिया में दुख की कोई बात नहीं, एकदम कोई बात नहीं। अच्छा बच्चे टोली ले आओ, ऐसे कहते हैं ना। भले हफ्ते हफ्ते एक दफा हो करके चक्कर लगा करके आओ, और यहाँ आकर के जम जाओ तो मालूम पड़े, क्योंकि और किसका तो समझते ही नहीं है। इनकी भाषा है वो तो और है, माने ब्रह्मा की भाषा सिंधी है, परंतु हिंदी में विस्तार में समझाने से कोई समझ जाएगा? अगर समझाने वाला सरल भाषा में समझाएगा तो, हिंदी दुनिया की सबसे सरल भाषा है। इसकी खासियत है जो अक्षर जैसा बोला जाता है वो ही लिखा जाता है। इसमें संस्कृत के भी अक्षर मिले हुए हैं, वो भी पुरानी भाषा, और ऐसे पुरानी दुनिया के इंग्लिश के अक्षर भी मिले हुए हैं, क्योंकि यहाँ भारत में अंग्रेजों ने भी राज्य किया है, तो उनकी भाषा भी हिंदी में मिक्स हो जाती है। तो सरल भाषा वाला समझाने वाला होगा तो सब समझेंगे। वो उनसे पूछो, तुमको समझाने वाली कोई गोप गोपी है? भगवान भी गुप्त वेश में आता है, गुप्त वेश में आने वाला गोप गोपियों को तैयार करता है। गोप गोपी उनको कहा जाता है जो भगवान के साथ गुप्त संबंध जोड़ने वाली है। उनका ज्ञान गुप्त, पुरुषार्थ गुप्त, उनकी भविष्य की प्राप्ति भी गुप्त। तो ऐसे गुप्त ज्ञान को समझ ले वे, आज याद करना लिख दे वे। इनसे पूछो, उन गोप गोपियों का नाम क्या है? एक गंगा भी है, बी लगाई दी है, मैंने अकेली गंगा नहीं है, यमुना भी है, सरस्वती भी है। एक राम कली है, राम बाप को कहा जाता है, जो बाप की बच्ची है पहली वो जगदम्बा बच्ची है। और भी कोई हो, गोपी होगी जरूर, तो बच्चों को मालूम पड़ जाएगा। दीदी आवे तो मालूम पड़ जावे, अच्छा मीठे मीठे सिकिले बच्चों प्रति शिकील दे क्यों कहा? जो बच्चे बहुत लंबे समय के बाद बिछड़े हुए थे वो मिले जाए, तो उनसे बड़ी सिक से बड़े प्रेम से मिलते हैं। अब भगवान के तो दुनिया में सभी बच्चे हैं, परंतु अलग अलग धर्मों में कन्वर्ट हुए हैं, अलग अलग धर्मों के बच्चे हैं। उन बच्चों में जिनकी संख्या 500-700 करोड़ हो जाती है, उनमें कोई शिकील दे है जो भगवान शिव से बहुत पुराने समय से बिछड़े हुए हैं। भगवान बाप का घर है सोलवर्ड, आत्मलोक, जिसे कहते हैं ब्रह्म लोक, पारलोक। भगवान है ही पारलोक का रहने वाला, उस घर में भगवान के सभी बच्चे रहते हैं, 500-700 करोड़ आत्माएं। भगवान बाप बिंदु रूप, बच्चे भी बिंदु रूप। तो परमधाम से सबसे पुराने पिछड़े हुए बच्चे कौन है? कौन है? दुनिया में धर्म तो अनेक हैं, नंबरवार आए हैं बच्चे अलग अलग धर्मों के। सूर्यवंशी भी है, चंद्रवंशी भी है, इस्लाम वंशी है, बौद्ध वंशी है, क्रिश्चियन वंशी वगैरह वगैरह वगैरह। परंतु भगवान बाप से पहले पहले कौन बिछोड़ते हैं? जबकि भगवान इस दुनिया में आते हैं तो उन पुराने पुराने बिछड़े हुए बच्चों से बड़े प्यार से मिलते हैं। इतने प्यार से सिख सिख और किसी धर्म वाले से नहीं मिलते हैं। साक्षात माँ के रूप में प्यार देते हैं। बाप के रूप में प्यार देते कौन है? कौन से धर्म के हैं? सूर्यवंशी है तो बोला मीठे मीठे सिकिले बच्चों प्रति, माता पिता का बाप दादा का यादगार। माता पिता अलग अलग होते हैं, माता फीमेल होती है, बाप मेल होता है। उनको कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा, माता पिता। बाप भी है तो माता भी है, गाते भी है तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुमेव माता च पिता तुमेव। तो माता पिता का याद प्यार और बाप दादा का याद प्यार। माता पिता अलग अलग पर्सनालिटी है और बाप दादा इस संगम युग में अलग अलग पर्सनालिटी नहीं है, एक ही व्यक्तित्व में दो आत्माएं, राम बाप की आत्मा जिस मुकर्रर रथ में शिव ऑलरेडी प्रवेश है, जिसे राम बाप कहा जाता है। वो राम बाप त्रेता वाला नहीं, संगम युग का राम बाप, जो सारी मनुष्य सृष्टि का पिता है। मुसलमान लोग भी उसे रमजान के रूप में मानते हैं, रामजान। वो भी कहते हैं वो मेरा बाप, मेरी जान है। और दादा, दादा बड़े भाई को कहा जाता है। इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष में जो पहला पहला पत्ता है वो सभी आत्मा आत्मा रूपी भाइयों का दादा है। कृष्ण वाली आत्मा संगम युग में उसको नाम देते हैं ब्रह्मा। तो बाप दादा दोनों कंबाइन बोला है तुम बच्चे बाप दादा को अलग अलग करेंगे वो फिर एक हो जाएंगे। यज्ञ के आज में राम बाप और दादा लेकर आज ब्रह्मा को अलग अलग कर दिया ना। वो राम बाप जिसमें शिव बाप मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं वो आत्मा प्रजापिता टाइटलधारी के रूप में ब्रह्मा में जगह बना लेती है। तो मुरली में बताया कि सिर्फ ब्रह्मा नहीं कहो ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी तुम अपन को क्या कहो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी। विद्यालय का नाम भी जो तुमने रख दिया ब्रह्मा कुमारी विद्यालय सन 47 से लेकर के सन 65-66 तक भी ओम मंडली नाम से बदल करके ब्रह्मा कुमारी नाम पड़ गया। वो राम बाप वाली आत्मा जब ये सब ब्राह्मणों की दुनिया में आती है तो उसके आने से पहले उसके साथ पूरा पूरा संस्कार मिलाने वाली आत्मा जिसे सीता कहा जाता है पहले पहले इस ब्राह्मणों की दुनिया में आकर के दूसरा जन्म लेती है। और उसी समय से मुरली चलती है कि ब्रह्मा कुमारी ना कहो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी कहो। विद्यालय का नाम भी 30x40x40 इंच के जो चित्र थे पुराने उनमें बदल दिया गया ब्रह्मा कुमारी विद्यालय से बदल करके प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी रख दिया गया। वो राम वाली आत्मा और कृष्ण वाली आत्मा जो सारी मनुष्य सृष्टि का दादा है। मनुष्य सृष्टि के 500-700 करोड़ पत्तों के बीच में पहले पहले जन्म लेने वाला है इस दुनिया में वो दादा और उसको जन्म देने वाला बाप राम। इस संगम युग के मध्य में और अंत में साक्षात प्रत्यक्ष होकर के एक ही शरीर में दोनों आत्माएं पार्ट बजाती इसलिए बोला बाप दादा का याद प्यार, ये माता पिता और बाप दादा इनका रिगार्ड का रूप है। बच्चों को इनका रिगार्ड रखना ही चाहिए। और रखना ही पड़ता है। बाकी बच्चे नंबरवार रिगार्ड देते हैं, ये बात और है। परंतु माता पिता और बाप दादा तो बच्चों को याद प्यार ही देते हैं, सदा याद करते हैं और सदा प्यार देते हैं। पर लास्ट में मुरली में आता है रूहानी बाप का रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी क्यों कहा? क्योंकि रूहों का बाप है। जो रूहें देह धारण करती हैं, देह अभिमान में रहती हैं, उनका बाप नहीं है। इसका मतलब 4.5 लाख मनुष्य आत्माएं जो पुरुषार्थ करके इसी जीवन में आत्म की स्थिति को धारण कर लेती है, उनका ही बाप है। बहुत नजदीकी है। प्रैक्टिकल में अनेक संबंधों से मिलता है। तो बोला जाता है रूहानी बाप, आत्माओं का बाप, रूहों का बाप। उनको देह बांध तो है ही नहीं। माता पिता को, बाप दादा को फिर भी देह बांध रहता है कि बच्चे मेरा रिगार्ड करें। अंदर में रहता तो है ना, क्योंकि देह बांध है। ये रूहानी बाप को वो भी बुद्धि में नहीं रहता, बच्चे मेरे को रिगार्ड दें या न दें। और रिगार्ड देना या न देना या बेइज्जती करना, ये तो देह के साथ ही हो सकता है। आत्मा बन जाएंगे तो रिगार्ड डिसरिगार्ड की बात ही नहीं रहती। इसलिए कहा रूहानी बाप का रूहानी बच्चों को नमस्ते, नमन करते हैं, झुकते हैं, बुद्धि को झुकाते हैं। क्यों? इसलिए झुकाते हैं, यही बच्चे हैं जो संसार में बाप को प्रत्यक्ष करते हैं, बाप का नाम बाला करते हैं, आत्म की स्थिति में रह करके। जब तक देह बांध रहता है तो बाप को सारा संसार में पूरा पूरा प्रत्यक्ष नहीं कर पाते। आत्म की स्थिति में स्थित हो जाते हैं तो बच्चे बाप समान बन जाते हैं, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। तो संसार में ऐसे बाप को प्रत्यक्ष करने लायक बन जाते हैं, इसलिए नमस्ते करते हैं। ओम शांति।